इकबाल ने देखा कि नूर भी टेबल पर आकर बैठ गई थी, लेकिन उसका उसका दिमाग अब भी सुलझा नहीं था, जैसे अंदर कहीं और ही विचार चल रहे हों। फैजान और इकबाल पहले ही नूर की पढ़ाई के बारे में बातचीत कर चुके थे, इसलिए फैजान को पता था कि नूर फिर से फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो पहले सेमेस्टर में फेल हो चुकी थी। फैजान ने कहा था कि नूर को फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी चाहिए, दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ दे देनी चाहिए। मगर मेरी तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में सपली है, मैं उसका क्या करूं? ऐसे ठीक आ जाएगा, नूर ने चिंता भरे स्वर में कहा। आप पढ़ सकती हैं, फैजान ने भरोसा दिलाते हुए कहा। ठीक है, मेहनत करनी होगी, लेकिन आप कर सकती हैं। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर एक साथ क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि सेकेंड सेमेस्टर में कोई सप्ली रह गई, तो उसे थर्ड सेमेस्टर में निकाल लीजिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फैजान की बात सुनकर नूर थोड़ी सोच में पड़ गई। सही बात थी, फैजान ने उसे सही सलाह दी थी। सच पूछिए तो इन दोनों कोई पहली बार था उससे उसकी स्टडी का फिक्र कर रहा था, सलाह दे रहा था। सभी एग्जाम देने के लिए तो मुझे वही यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसने धीरे से कहा। उसे तो उसे शहर से डर लगने लगा था, जिस शहर से वो बेसत होकर आई थी। हाँ, एग्जाम तो आपकी वहीं होंगे, यूनिवर्सिटी में, फैजान ने गंभीरता से उत्तर दिया। खाना खाने के बाद फैजान हाथ धोने के लिए आंगन में आया, जहां सिंक लगा हुआ था। नूर उठकर उसके पीछे आ गई। नूर का गुस्सा भी उतरा नहीं था, उसके मन में जो शक भरा हुआ था वो सभी के लिए था। आप तो मसूरी चले गए थे घूमने के लिए, तो वापस कैसे आए, और आते ही आप जहां आते हैं, नूर ने हल्के से आश्चर्य और चिढ़ के साथ कहा। मैं मरकर थोड़ी गया था, फैजान मुस्कुराते हुए बोला, जो मैं वापस ना सकूं। आप मेरे लिए यहां आए और स्टडी की सलाह दे रहे हैं, थोड़ी हैरानी की बात नहीं, नूर ने थोड़ी गंभीरता से कहा। इस बीच इकबाल और सुल्ताना बाहर की तरफ चले गए थे। क्या आप मुझे बेवकूफ बनाने की शर्त लगाकर आए हैं? कुछ ऐसा है तो बता दीजिए पहले ही, नूर थोड़े गुस्से से बोली। मैं आपके लिए नहीं कराया, फैजान ने गंभीरता से कहा, सर झुकाते हुए। मैं अपनी बहन की गलतियों की माफी मांगना चाहता हूं। अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगी तो आपकी बद्दुआ मेरी बहन को लगेंगी, और मैं ये नहीं चाहता। फैजान नहीं जानती थी कि फैजान ने उसके लिए सारे घर वालों से लड़ाई की थी। उसकी नज़र में नूर बहुत इज्जतदार और पाक साफ लड़की थी। वो नूर के प्रति हमदर्दी रखता था। बाद में जब नूर को पता चलेगा कि फैजान ने उसकी तरफदारी की थी, उसे एहसास होगा कि फैजान सच में उसकी कितनी इज्जत करता था। उसकी नज़र में नूर कैरेक्टरलेस लड़की नहीं थी, एक ऐसी लड़की थी जिसमें बचपना था, इसीलिए फैजान ने नूर की साइड ली थी। फैजान तो बस चुप रह गया, वो नूर के साथ बहस नहीं करना चाहता था। आप लोगों को बद्दुआ नहीं लगती? किसी की आपको लग ही नहीं सकती, नूर ने तीखे स्वर में कहा। अच्छा, फैजान ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरे लिए वो टी शर्ट क्यों लेकर आई थी? टी शर्ट? नूर ने कुछ याद करने की कोशिश की। हाँ नूर, आप मुझे घर का मुलाजिम समझकर मेरे लिए ले आई थी, फैजान ने गंभीरता से कहा। नूर सोचने लगी। आपको लगा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, आप मेरी मदद करना चाहती थी, फैजान ने यही महसूस किया। आपको अभी भी लोगों को समझना नहीं आया ना, फैजान ने धीरे कहा। मैं अपने बारे में आपको एक बात बताता हूँ, मेरा आपसे कोई लालच नहीं है, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है, जो आपने उस दिन मेरे लिए टी शर्ट लेकर शुरू किया था। इतनी बातें चल रही थीं कि बीच में सुल्ताना बेगम आ गईं, लेकिन इकबाल ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। आप इंसानियत के लिए अब मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं? नूर ने गुस्से में पूछा, उसके स्वर में अभी भी नाराजगी थी। बोलिए नूर, फैजान ने शांत स्वर में कहा। तो आप फिर कहीं मत आए, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे रास्ते में आने की, नूर ने बेरुखी से कहा। मैं तो सिर्फ आपको गाइड करने आया था, फैजान ने कहा। मेरे अब्बा हैं, उन्हें सब पता है, वो मेरी मदद करेंगे। मेरी जिंदगी में किसी बाहर वाले की सलाह की कोई जगह नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, आगे मत आए, नूर ने ठंडी सी आवाज में कहा और चली गई। फैजान ने उसे जाते हुए अंदर से देखा। इकबाल उसके पास आया और बुरा मानने लगा कि उसकी बेटी ने ऐसे बात की। बेटा, इकबाल ने कहा, लेकिन फैजान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि नूर ने क्या कहा। फिर फैजान ने कहा, आप कह रहे थे कि नमाज के लिए जाना है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। और इस तरह आज पहली बार फैजान इकबाल के साथ मस्जिद की तरफ निकला, वरना वो हमेशा अकेला ही जाता था। माहिरा शाम को घर वापस आई। फैजान के जाने के बाद वो गेस्ट हाउस चली गई, जहां काम चल रहा था। उसकी माँ जुबेदा बेगम उसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ गई थी तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जुबेदा बेगम ने उसे देखते हुए पूछा। गेस्ट हाउस गई थी, माहिरा ने बिना घबराए जवाब दिया। आज तुमने जानबूझकर सुबह ठीक नहीं किया, लड़ाई करवाने आई ना? जुबेदा बेगम की आवाज में चिंता झलक रही थी। उसे अपनी बेटी की हर बात अच्छे से पता था। फैजान और अरमान की लड़ाई तुमने ही करवाई है ना? जुबेदा बेगम ने पूछा। माहिरा मुस्कुराई और आराम से बोली, हाँ। क्या मिला तुम्हें आखिर ये सब करके? जुबेदा बेगम ने गंभीरता से पूछा। वो सच में परेशान थी। वो चाहती थी कि फैजान घर में रहे, लेकिन अब लड़ाई के बाद वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसे अपने सामने नहीं देखना चाहती थी, माहिरा ने शांत होकर कहा। मैं चाहती थी कि वो कहीं यहीं ना रुक जाए। तो इसके लिए इतना हंगामा क्यों करवाया कि वे एक दूसरे को मारने लगे? जुबेदा बेगम का गुस्सा छलक पड़ा। माहिरा ने बड़े आराम से थोड़े एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। आप ही ने तो मुझे कहा था कि मैं फैजान से कुछ भी ना कहूं, उसके साथ बदतमीजी ना करूं। देख लिया आपने ना, जब मैं अपने मुंह से नहीं बोलती तो कितना बड़ा तूफान आता है। जुबेदा बेगम उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि अपने अब्बा के जाने के बाद दोनों बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गई थीं और शायद इज्जत करना भी छोड़ चुके थे। नमाज के बाद फैजान और इकबाल दोनों मस्जिद से बाहर आए। बाहर निकलते ही फैजान ने इकबाल का फोन लिया और उसे अपने नंबर में सेव करने को कहा। जरूरत पड़ने पर आप मुझे फोन कर सकते हैं, फैजान ने कहा। और हाँ, अगर मैं फोन नहीं उठाऊं तो मैसेज कर दीजिए, फ्री होते ही मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। फैजान ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि वो ऑफिसर बनने जा रहा है और ट्रेनिंग पर है। नूर को तो पता था, लेकिन इस बीच नूर सब कुछ भूल चुकी थी कि असल में फैजान इस वक्त क्या कर रहा है। मेरी बेटी बदतमीज नहीं है, इकबाल ने कहा। बस हालात ऐसे बन गए कि वो इस तरह हो गई। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। करना भी नहीं चाहिए, फैजान ने गंभीर होकर कहा। अगर इतने सब होने के बाद भी नूर दुनिया पर भरोसा करेगी तो कैसे चलेगा? उसके लिए ये बहुत जरूरी है, फैजान की आवाज में सचमुच फिक्र झलक रही थी। उसकी चिंता सिर्फ नूर की भलाई के लिए थी, इकबाल ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा। फिर भी आप हमारे घर आए और उसने आपसे इस तरह बात की? नहीं नहीं, फैजान ने जल्दी से कहा। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे अच्छा ही लगा कि उसने खुद को संभालना शुरू किया। लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी होता है, संभल कर रहना। और अगर कोई भी इस हालत में होता तो मैं भी यही करता, इसीलिए आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत कीजिए कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की। इकबाल को फैजान की बातों में सच्चाई दिखी, लेकिन मन में सवाल रह गया। एक बात और है, फैजान ने धीरे से कहा। अरमान ने नूर को बेवकूफ बनाने के लिए किसी से शर्त नहीं लगाई थी, रिहान ही उसे मिसगाइड कर रहा था।
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं।